बीस गहरी सोच। अरमान के मन में सोचा, आखिर ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। मैं इन्हें आने वाले खतरे से बचाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इन लोगों का ब्लैक डेविल से कोई सामना हो। आखिरकार ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। मैं आने वाले खतरे से बचना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इन लोगों का ब्लैक डेविल से सामना हो। क्योंकि आज तक उन सबको इतना ही पता था कि ब्लैक डेविल अरमान का राइवल है और वो इंटरनेशनल लेवल पर माफिया को हैंडल करता है और नेशनल लेवल पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ अरमान ही सब कुछ हैंडल करता है। तो इसलिए सब लोगों को लग रहा था कि अरमान खामखा परेशान हो रहा है। भले ही ब्लैक डेविल का कनेक्शन इंटरनेशनल माफिया से हो, लेकिन अरमान की पावर भी कुछ कम नहीं थी। अरमान के अधीन आसपास के सभी शहर आते हैं और सभी बड़े बड़े माफिया, नेता, पुलिस सब अरमान को सलाम करते थे। इसीलिए आकाश और सुमित दोनों ही अरमान को देखकर बेहद शांत आवाज में बोले, अरमान, हम जानते हैं कि तुम्हारा परेशान होना बिल्कुल जायज है, लेकिन तुम हमारी फीलिंग भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। हम बचपन से तुम्हारे साथ हैं और अब हम तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही तुम हमें अरमान सूर्यवंशी नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया बनने के बाद मिले हों, लेकिन जब तुम 15 साल के थे तब से हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और आहान, आहान तो तुम्हारे साथ बचपन से रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं चले जाएं। फिलहाल मेरे पास एक आइडिया है। जैसे कि तुमने पहले ही मारिया और टाइगर को ब्लैक डेविल की कमजोरी ढूंढने में लगा दिया है और साथ ही साथ उसकी पावर कहाँ कहाँ है इस बारे में पता लगाने के इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। अरमान ने पहले ही टाइगर और मारिया को सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। हालांकि अरमान मारिया को ज्यादा काम नहीं देना चाहता था क्योंकि वो इस वक्त प्रेग्नेंट थी, लेकिन मारिया का दिमाग इस वक्त पूरी तरह से उसके वश में था और उसने जानबूझकर अरमान से कहा था कि किंग मुझे कुछ ना कुछ काम जरूर दे। अगर वो मारिया को ये सोचकर काम नहीं देगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो मारिया को ये लगेगा कि वो कमजोर हो गई है और वो अपने बच्चों को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाना चाहती थी। इसीलिए मारिया ने अरमान से कहा था कि ब्लैक डेविल का सारा मैटर वो अकेले हैंडल करेगी, टाइगर नहीं, विवेक टाइगर को संभाल लेगा। विवेक को उसे इस तरह से अंडरग्राउंड करना था कि ब्लैक डेविल का कोई भी आदमी उसकी कोई खबर ना ढूंढ पाए, क्योंकि जब तक विवेक की खबर ब्लैक डेविल को नहीं लगेगी तब तक वो अपनी कोई अगली नई चाल नहीं चलेगा। इसीलिए अरमान ने प्लान किया था कि विवेक सिंघानिया आप कहाँ हैं कहाँ नहीं इस बारे में ब्लैक डेविल यानी सम्राट को बिल्कुल भी पता नहीं लगने देगा। फिलहाल अरमान ने उन सब की ओर नाराजगी से देखते हुए गहरी आवाज चिढ़ते हुए कहा, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे तुम सब वैसा ही करो। तुम लोगों से बात करना पूरी तरह से बेकार है, लेकिन मेरी एक बात सबके सब कान खोलकर सुन लो। आस्था और अंश अविनाश के साथ ऑस्ट्रेलिया जरूर जाएंगे। इतना भूलकर अरमान ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और लंबे लंबे कदमों से तुरंत बाहर की ओर निकल गया। अब सब हैरानी से अरमान को जाते हुए देख रहे थे। ध्रुव भौहें से कोसते हुए एकदम से बोला, जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह है, वरना भाई कभी भी आस्था, भाभी और अंश को खुद से दूर करने की बात नहीं कहते। तभी आकाश ने बात की गंभीरता को समझते हुए अपना सर हिलाया और गहरी सांस भरते हुए बोला, मुझे लगता है कि हमें अरमान के फैसले के साथ होना चाहिए। हमारी मजबूरी है कि हम अरमान को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन अगर अरमान चाहता है कि आस्था और अंश अविनाश जी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो हमें उन्हें जाना देना चाहिए। और वैसे भी वहां पर आस्था के दादाजी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी ऑलरेडी 3 से 4 महीने लगातार अरमान आस्था को भेजने से मना कर रहा था, लेकिन अब वो खुद उसे भेजने के लिए तैयार है, तो हमें उसके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे जाने देना चाहिए। ये बोलकर सभी ने अपने अपने फैसले पर हामी भर दी थी। वहीं अविनाश के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो तो खुद कब से आस्था को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। जब से उसे ये पता चला है कि आस्था के आसपास खतरा मंडरा रहा है और हर दिन कुछ न कुछ कांड हो रहा है, तो वो पूरी तरह से हिल गया था। वो आस्था पर अब किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने देना चाहता था, इसलिए वो आस्था को दादाजी से मिलवाने के बहाने उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। अब अरमान का फैसला सुनाने बाद एक्साइटमेंट में उसने सबको खुशी खुशी से आगे बढ़कर गले से लगा लिया था और अगले ही पल कंधे उचकाकर बेफिक्री से उनसे बोला, आई डोंट नो ये ब्लैक डेविल्स या इस शख्स का जो भी नाम है, लेकिन इन सब के बीच सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मेरी बहन अब मेरे साथ जा रही है और देखना मेरे दादाजी आस्था से मिलकर कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये बोलते हुए अविनाश के चेहरे पर जबरदस्त मुस्कुराहट झलक रही थी। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में सब लड़कियां बहुत खुश थीं, क्योंकि जब से अंश हुआ था तब से सभी लड़के काम का बहाना बनाकर जल्दी ही घर आ जाया करते थे और उसके साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन अचानक हुई अंश की किडनैपिंग की वजह से सभी थोड़े से उदास रहने लगे थे, मगर अब सभी एक साथ घर पर ज्यादातर रहने लगे थे, जिसकी वजह से सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी और अपने अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगी थी। फिलहाल तो आस्था अंश को गोद में लिए बैठी हुई थी और बार बार दरवाजे की ओर घूरकर एक टक देखे जा रही थी। उसका दिल इमोशंस और बेचैनी से भरा हुआ था। नानी माँ ने आस्था की आंखों की बेचैनी भांप ली थी और अगले ही पल उन्होंने गंभीर आवाज में आस्था से सीधे सीधे पूछा,
क्या बात है बेटा, दामाद जी की याद आ रही है क्या? अरे बिटिया, अगर इतनी याद आ रही है तो तूने उन्हें जाने ही क्यों दिया? अरे मैं तो कहती हूँ, जब अपना जमा जमाया काम है तो घर से काम कर लेते, क्या जरूरत है बाहर जाने की? अभी बच्चा छोटा है, अभी भी उन्हें घर परिवार में अपना समय देना चाहिए। अब ये सुनकर आस्था ने हल्का सी स्माइल दी और नानी माँ को धीमी आवाज में समझाते हुए जवाब दिया, नानी माँ, जब मैं उनकी जिंदगी में नई नई आई थी तब उन्हें काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था, लेकिन अब कान्हा जी की इतनी कृपा हुई है कि कम से कम उन्हें अब काम के अलावा अपने बीवी और बेटे का भी ख्याल आता है। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि सबके सब एक वक्त पर एक साथ ऐसे हड़बड़ाकर क्यों चले गए, और ये आहान जी भी अभी तक नहीं आए। मैं सभी को बहुत याद कर रही हूँ, क्योंकि आस्था को ये बात अच्छी तरह से याद है कि ये 2 से 3 महीने किस तरह से हंसते खेलते हुए बीते थे। कभी आकाश बहाने से आस्था के पास आता था और अंशरो गोद में लेने की कोशिश करते हुए कहता, आस्था, इसको गोद में कैसे लेते हैं? क्या तुम एक बार मुझे इसे मेरे गोद में दे सकती हो? आस्था को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब उसने पहली बार आकाश की गोद में अंश को दिया था, तो तुरंत ही आकाश अंश के स्पर्श से एकदम घबरा गया था और उसने झट से अंश को वापस आस्था की गोद में थमा दिया था और जल्दी से ठिठक कर बोला, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता, ये कितना सॉफ्ट सा है, कोई इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है? इतना बोलकर आकाश बिना कुछ सुने वहां से भाग खड़ा हुआ था। वहीं सुमित ने सोचा कि आकाश तो अंश को गोद में नहीं ले पाया, लेकिन वो तो आसानी से अंश को गोद में ले लेगा, इसीलिए वो तुरंत आस्था के पास आकर आकाश का मजाक उड़ाते हुए बोला, आस्था, देखा तुमने, आकाश इतनी भारी भरकम चीजें उठा सकता है, लेकिन वो तुम्हारे इस नन्हे से बच्चे को नहीं उठा पाया, इसीलिए तुम इसे मुझे दे दो और तुम जाओ, जाकर आराम करो, तुम देखना मैं इसे तुमसे अच्छे से संभाल लूंगा, ठीक है?
ये बोलकर जैसे ही सुमित ने अंश को गोद में लिया, वैसे ही सुमित की गोद में अंश के आते ही सुमित को अंश काफी लचीला लचीला सा लगने लगा था, क्योंकि उसका लचीला और एकदम सॉफ्ट शरीर सुमित बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और एकदम से ही उसने अंश को वापस आस्था को देते हुए बहाना बनाया, ओ नहीं नहीं आस्था, मैं इसे किसी और दिन ले लूंगा, ठीक है? वो एक्चुअली मैं तो भूल ही गया, मुझे ऑनलाइन इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है, मैं बाद में आता हूँ, मतलब बाद में लेता हूँ अंश को। ये बोलकर वो वहां से 9:00-11:00 हो गया। वहीं आहान हंसते हुए सबकी ओर देखकर नटखट अंदाज में बोला, ये दोनों भाई वैसे तो एकदम शेर बनते हैं, लेकिन देखा मेरे चैंप के आगे किस तरह से ये दोनों डर के भाग गए हैं, ना मेरे चैंप ने बंदूक चलाई ना ही मुक्का बरसाया, फिर भी देखो ये दोनों 1 सेकंड में उसे कैसे डर गए हैं, वो दोनों उसे छू तक नहीं पा रहे हैं। अरे वो मेरा चैंपियन है, मेरा, तो वो किसी और की गोद में कैसे आएगा, वो सिर्फ मेरी गोद में आएगा, है ना चैंप? उस समय आस्था हॉल में बीच में बैठी थी और उसके चारों ओर खड़े होकर सभी अलग अलग तरीके से अंश को लेने की कोशिश कर रहे थे। सुमित और आकाश तो अंश के लचीले और एकदम सॉफ्ट स्किन होने की वजह से उसे अपनी गोद में ले ही नहीं पाए थे, लेकिन अब आहान को अपनी तारीफ करने का मौका मिल चुका था और वो ध्रुव को देखकर बोला, देख मेरे चैंप ने इन दोनों को क्लीन बोल्ड कर दिया है, लेकिन मैं जैसे ही अपने चैंप को गोद में लूंगा वो मेरे साथ खेलेगा, मुस्कुराएगा और मस्ती भी करेगा। ये बोलकर अब आहान हीरो की तरह स्टाइल से आगे बढ़ा। वहीं रौनक ताली बजाते हुए चिल्लाई, ओ यस यस यस, मेरे लल्लू लाल, तुम कर सकते हो, तुम अंश को गोद में ले सकते हो, तुम कर सकते हो। अब जैसे ही रौनक ने ऐसे चिल्लाकर चीयर अप किया, वैसे ही आहान पहले तो खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने रौनक के आगे के शब्द सुने यानी लल्लू लाल पर गौर किया, तुरंत उसका मुंह बन गया और वो घूर कर रौनक को देखने लगा। फिर थोड़ा ऊंची आवाज में उससे बोला, मेरा चैंप सुनेगा तो क्या सोचेगा, हाँ कि उसका हीरो चाचू लल्लू लाल है? शट अप, बच्चों के सामने ऐसे शब्द नहीं बोलते, और तुम्हें कितनी बार कहा है इस तरह की हरकतें मत किया करो यार, मेरे होने वाले बच्चे पर इसका गलत असर पड़ेगा। इतना सुनते ही अब हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी जोरों से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। वहीं अरमान, जिसने कुछ समय के लिए घर से ही काम संभाला था, वो वहीं हॉल में बैठे हुए लैपटॉप पर अपनी उंगलियां फिराते हुए सारी सिचुएशन एंजॉय कर रहा था और उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कान झलक रही थी। तभी ध्रुव आहान को कोहनी मारते हुए बोला, ओह अब तुम रौनक की बातों को छोड़ो और तुमने जो वादा किया है वो वादा पूरा करो, जाओ जाकर चैम को गोद में लो, देखो तुम उसे ले पाते हो या नहीं, लेकिन अगर तुम उसे नहीं ले पाए तो उसके बाद मेरी टर्न होगी, ठीक है? वहीं राधिका, एंजल, अविनाश, वंशिका और रश्मि सभी मुस्कुराते हुए ये सारा नज़ारा हंसकर देख रहे थे, क्योंकि जब से अंश इन लोगों की जिंदगी में आया था सबको कोई और काम ही नहीं था, सभी लोगों का ध्यान बस अंश के आसपास ही रहता था, उसके छोटे छोटे काम करना, उसके लिए कपड़े लाना, उसके साथ खेलना, उसके लिए खिलौने लाना। और इतना ही नहीं, आहान ने तो अंश के लिए अभी से स्पोर्ट्स कार, बाइक वगैरह तक खरीद लिए थे और साथ ही साथ छोटे छोटे बंदूकों का कलेक्शन भी खरीद लिया था। ये सब देखकर अरमान उस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा से नाराज भी हुआ था, लेकिन फिलहाल ध्रुव ने जल्दी ही आहान को एक बार फिर चैलेंज करते हुए भड़काया, ओए आहान, तेरे पास अब भी मौका है, अगर अब तुम अंश को गोद में लेने नहीं वाले हो तो मैं उसे तुमसे पहले ले लूंगा, ठीक है? ये सुनकर अगले ही पल आहान जल्दी से दौड़कर ध्रुव के सामने आकर खड़ा हो गया और मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखते हुए नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरे होते हुए ये इम्पॉसिबल है,
मैं ही अंश को गोद में लूंगा। देखो वो मेरी तरफ देखकर हंस रहा है और मेरी गोद में आने के लिए कैसे मचल रहा है। फिलहाल अब आहान ने देर न करते हुए अंश को अपनी गोद में थाम लिया था और बड़े प्यार से थोड़ा थोड़ा उसे ऊपर नीचे उठाने लगा था। वहीं आस्था तो केवल मुस्कुराते हुए उन सबकी बातों को एंजॉय कर रही थी और स्माइल करते हुए मन में खुश होकर सोच भी रही थी कि ये सब कितने प्यारे हैं। क्या ये हमारे बेटे को इसी तरह से हमेशा प्यार करते रहेंगे? क्योंकि आस्था को नानी माँ के अलावा बचपन में किसी और का कोई प्यार नहीं मिला था, और जब वो अपने मामा मामी के घर आई थी तो प्रियंका की माँ केवल उसे ताने, टॉर्चर और घर काम ही करवाती थी। उस वक्त उसने मामा मामी और प्रियंका की आंखों में अपने लिए एक बूंद भी सच्चा प्यार नहीं देखा था। केवल नानी माँ ही उसे दिलोजान से चाहती थी और आज भी वो उससे बहुत प्यार करती है। बहुत कम उम्र में उसने अपने पालने वाले माता पिता भी खो दिए थे और अपने रियल परिवार से भी बिछड़ गई थी, और जब उसे पूरे परिवार का साथ मिला तो अब इस प्यारे से माहौल को देखकर उसकी आंखें खुशी छलकने लगी थी। लेकिन तभी उसी वक्त अंश ने आहान की गोद में ही सूसू कर दिया था। अब ये देखकर तो पूरे हॉल में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा था। सभी बुरी तरह से हंसने लगे थे। रौनक तो पूरी तरह से सोफे पर लोटपोट होने लगी, जो कि नानी माँ के पास था, वहीं बैठी हुई थी और वहीं नानी माँ के ऊपर पूरी तरह से लोटपोट होकर हंसने लगी थी। वहीं नानी माँ ने तुरंत रौनक के कंधे पर हाथ मारते हुए घबराहट में कहा, अरे नालायक, अपने हंसने के चक्कर में क्या हमारी बुजुर्ग की हड्डियां तोड़ देगी? इस उम्र में तो हमारी हड्डी भी नहीं जुड़ेगी। ये बोलकर वो रौनक को खुद से दूर करने लगी थी। लेकिन रौनक को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और वो अब नानी माँ के भी मजे लेने लगी। वहीं ध्रुव भी पेट पकड़कर हंस रहा था, उसका भी हंसते हंसते बुरा हाल था। फिलहाल आस्था, जो कि बीते 2 से 3 महीनों की बातें सोच रही थी, अचानक से हंस पड़ी। तब नानी माँ ने आकर आस्था के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से थपथपाया, क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? तब आस्था मुस्कुराई और चहकते हुए बोली, आपको याद है नानी माँ, जिस वक्त अंश घर पर आया था, किस तरह से सबने खुशी से उसका स्वागत किया था और सब किस तरह से उसके साथ मस्ती किया करते थे? सच कहूँ नानी माँ, वो भी दिन क्या दिन थे, बहुत याद आते हैं।